ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धम् कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आज 17 श्लोक समझना है लेकिन हम लोग आवृत्ति करेंगे श्लोक नंबर 17 और 18 के। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 6 श्लोक 17-18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वरूपा असूत स्वरूपासूत भूतस्य भार्या रुद्रान् च रुद्रांश्च कोटिशः रैवतः अजः रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः। अज एक पाद अहि बहनः अहि ब्रह्मणः बहुरूपः महान् इति रुद्रस्य पार्षदः च अन्ये पार्षदाश्चान्ये घोरः प्रेत विनायकः प्रेत विनायकः स्वरूपासुत भूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतो जो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः अजैकपादहिर्ब्रह्मणो अजैकपादहिर्ब्रह्मणो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा प्रेत विनायकः स्वरूपा स्वरूपा ने असूत उत्पन्न किया भूतस्य भूत की भार्या पत्नी रुद्रा रुद्रों को च तथा कोटिशः एक करोड़ रैवतः रैवत अजः अज भवः भव भीमः भीम वामः वाम उग्रः उग्र वृषाकपिः वृषाकपि अजैकपात अजैकपात अहिर्ब्रह्मणः अहिर्ब्रह्मण बहुरूपः बहुरूप महान महान इति इस प्रकार रुद्रस्य इन रुद्रों के पार्षदः उनके पार्षद च तथा अन्य अन्य घोरा अत्यंत भयानक प्रेत भूत विनायक तथा विनायक अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद भूत की पत्नी स्वरूपा ने एक करोड़ रुद्रों को जन्म दिया जिनमें से प्रमुख ग्यारह रुद्र ये हैं रैवत अज भव भीम वाम उग्र वृषाकपि अजैकपात अहिर्ब्रह्मण बहुरूप तथा महान भूत की दूसरी पत्नी भूता से उनके साथी भयंकर भूतों तथा विनायकादि का जन्म हुआ। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि भूत के दो पत्नियां थी, इनमें से पहली पत्नी स्वरूपा ने ग्यारह रुद्रों को जन्म दिया और दूसरी पत्नी से रुद्र के पार्षदगण उत्पन्न हुए जिन्हें भूत तथा विनायक कहा जाता है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। दक्ष का प्रसंग चल रहा है। दक्ष महान व्यक्ति हैं, सृष्टि का विस्तार बहुत किया। सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे लेकिन उनके योजना में भारी विघ्न आई। लेकिन फिर भी सृष्टि का विस्तार किया, महानता ही प्रकट हो रहा है। आप जानते हैं कथा, ये जब मैथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार करना था तो दक्ष 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन नारद जी उनको 10 बात बोले, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको आदेश भी दिए कि सृष्टि का विस्तार करना है। सृष्टि के विस्तार के लिए वे तपस्या के लिए गए, लेकिन नारद जी उनको 10 बात बोले, 10 पहेली जैसा, बुझौल जैसा, उसका अर्थ नहीं बतलाए, लेकिन औत्पत्तिक मनीषया वे इतने महान थे, जन्म से इतने मेधावी थे कि अपने मेधा से, अपने बुद्धि से ही उन बातों का अर्थ वे निकाल लिया। बात कुछ विचित्र थी और कहे कि अरे पिता के आदेश जाने बिना कैसे तुम लोग सृष्टि करोगे, अरे पिताजी तो स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जाकर के सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन अब नारद जी बोल रहे हैं तो वो दक्ष के पुत्र अपने सहज बुद्धि से, नैसर्गिक बुद्धि से इसका अर्थ निकाल दिए कि वास्तव में पिता तो शास्त्र है और पिता का आदेश, शास्त्र का आदेश प्रवृत्ति परक नहीं है। पूर्वा पूर्व और अपर का विचार करें तो शास्त्र का आदेश प्रवृत्ति परक नहीं है। तो वे लोग अपने बुद्धि से ही अर्थ निकाल लिए कि तो शास्त्र सृष्टि के विस्तार का आदेश नहीं देता है तो हम लोग क्यों करें, तो त्याग दिए। ऐसे ऐसे 10 बात बोले थे कि एक नदी है जिसके दोनों तरफ धारा बहती है, तो अपने बुद्धि से अर्थ निकाल लिए कि माया तो सृष्टि भी करती और प्रलय भी करती है। कह कह रही एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसका अंत नहीं है, तो तुम लोग कैसे सृष्टि करोगे, तो अपने से वे अर्थ निकाल लिए, समझ गए कि अरे जो कर्म बंधन है तो इसका तो अंत नहीं है, कर्म का अंत नहीं है। तो ऐसे 10 बात बोले और वे उसका अर्थ निकाल करके सृष्टि के विचार को छोड़ दिए, सन्यास धर्म स्वीकार कर लिए। दक्ष तो थोड़ा सा निराश हुए, नारद जी पर उनको क्रोध आया, लेकिन ब्रह्मा जी आकर के उनको कहे, समझाए तो फिर से सृष्टि किए, तो इस बार 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। तब 1,000 फिर हुए तपस्या के लिए चले गए उसी स्थान पर। तो अब नारद जी को 10 बात बोलना नहीं पड़ा, बस एक बात, अरे उसी भाई को अच्छा माना जाता है जो बड़े भाई का अनुगमन करे, जो बड़े भाई का अनुगमन करता है तो उसका जस बहुत फैलता है। बस इतना सुने ये भी सन्यास धर्म स्वीकार कर लिए। लेकिन दक्ष को बहुत क्रोध आया कि हम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं और यह साधु आकर के इसमें बाधा डाल रहा है, ये तो हमारे दुश्मन का काम कर रहा है, बैरी है। नारद जी मिल गए तो नारद जी को बहुत बोला, बहुत तिरस्कार किया, अरे कि तू साधुओं के बीच में घूमता है लेकिन साधु का गुण नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों को अभी किसी भी ऋण से मुक्त नहीं हुए और सन्यास का मार्ग दिखा दिया, तेरे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी संन्यास लेने लायक हैं, एकदम हृदय में दया नहीं है। तो कुछ तो दया होनी चाहिए। तुम सोचते हो कि उन लोगों को सन्यासी बना देंगे। अरे तुमको साइकोलॉजी का ज्ञान है कि जब तक व्यक्ति विषय की कटुता का अनुभव खुद नहीं करता है, तब तक सन्यास में बहुत स्थिर नहीं होता है। तो साइकोलॉजी का भी ज्ञान नहीं है। इतना क्रोध में था, कहा तो हमसे हमारा तो सर्वनाश ही कर दिया, तो मैं भी साफ देता हूं कि तुम्हारा भी कहीं घर गृहस्थी नहीं रहेगा। और नारद जी को दक्ष साप दिया, लेकिन अब बहुत निराश हो गया। क्रोध में नारद जी को तो बोल दिया, लेकिन दक्ष को भी बहुत भारी निराशा आई कि सब हमारा परिश्रम बिकार गया, ये पुत्र उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो वो भी अब गृहस्थी का ही त्याग कर दिया। इतना निराश हुए कि अब दाम्पत्य जीवन में नहीं रहेंगे, अब पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी को चिंता लगी रहती है कि सृष्टि का विस्तार हो। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, व्यवस्था देखते हैं, और उनको चिंता रहती है कि सृष्टि का विस्तार हो। कई एक जगह ऐसा देखा गया है कि कोई अब सृष्टि के विमुख हो रहा है तो आकर के प्रेरित करते हैं और समझाने में बहुत दक्ष है। एक बार की घटना है कि नारद जी के उपदेश से प्रभावित हो करके प्रियव्रत महाराज भी अब ब्रह्म सत्र में दीक्षित होना चाहते थे। उनकी योजना थी कि अब हम दूसरा कुछ कार्य नहीं करेंगे, केवल श्रवण कीर्तन में ही सारा समय बिताएंगे। अब वे एकदम दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन अब उनके पिताजी भी कह रहे थे कि नहीं, विवाह करो, सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन अपने पिता की बात का अनसुनी कर दिए। लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत चिंता रहती है। एतस्य गुण विसर्गाय, एतस्य गुण विसर्गस्य प्रबृंघणानुध्यान व्यवस्थित। ब्रह्मा जी का निर्णय ही है कि इस संसार का वृद्धि करना है, तो वे वहां पहुंच गए। और ब्रह्मा जी आए तो सब लोग खड़े हो गए। वहीं मनु महाराज भी थे, नारद जी भी थे, प्रियव्रत महाराज भी थे। और ब्रह्मा जी किसी को समझाने में बहुत दक्ष हैं। लोग कहते हैं अरे ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिलेगा तो नहीं समझ पाएगा, मतलब समझाने में ब्रह्मा जी बहुत दक्ष हैं। और ऐसे आकर के प्रियव्रत को बांधे, सबसे पहले आकर के कहे कि देखो मैं अभी जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और इसमें दोष बुद्धि मत करना, मैं भगवान की बात बोल रहा हूं और भगवान को कोई अपने बुद्धि से नहीं समझ सकता। यह मत सोच लेना कि हम भगवान को समझ रहे हैं, वो अपरिमेय है, और दोष बुद्धि मत करना, हमारे बात को सुनो। कोई एक बात बोले उसमें कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि वन में चले जाओगे तो इसी से सब कुछ हो जाएगा। अरे वन में कोई रहे या घर में रहे, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंद्रियों पर नियंत्रण किसका कितना है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना यह महत्वपूर्ण बात है, घर और वन यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। और सिद्धांत देने लगे कि भयं प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात्, जतः स आस्ते सहसठ सपत्ना। कोई लापरवाह व्यक्ति है, बहुत सावधान नहीं है, तो भले ही वन में चला जाए लेकिन उसको भी भय है। क्यों भय है? कि छह शत्रु के साथ है। वास्तव में इंद्रियां ही जिस पर नियंत्रण ने सबसे भारी शत्रु है, क्योंकि वन में जाने से क्या हुआ, उसके छह इंद्रियां तो उसके साथ हैं जो शत्रु स्वरूप हैं। तो बनम भयम बने भयम प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात् जतः से आस्ते सहसठ सपत्ना, छह शत्रु के साथ है इसलिए वन में भी भय है। और जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमम किम न करोत्य वद्यम। और जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, जितेन्द्रियस्य आत्मरते है, जो भगवान में मन को लगाया हुआ है और जो ज्ञानी है विवेकी है, तो गृहाश्रमम किम न करोत्य वद्यम, ये गृहाश्रम उसका क्या बिगाड़ लेगा, गृहस्थी में रहने से क्या उसकी क्षति हो जाएगी। यदि उसका मन भगवान में लगा है, इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो गृहस्थी क्या क्षति कर लेगा। अब आ करके ब्रह्मा जी प्रवचन किए, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। प्रियव्रत महाराज जो अपने पिता के बात का अवहेलना ही कर दिए थे, लेकिन ब्रह्मा जी में इतना गौरव बुद्धि है कि सीधे उनके बात को स्वीकार कर लिए। वे उम्र में बड़े थे लेकिन विवाह नहीं किए थे। छोटे भाई का विवाह हुआ तो वो राज्य कर रहा था, लेकिन ऐसी आवश्यकता आ गई कि शासन करने की आवश्यकता थी, राज्य करने की आवश्यकता थी। और प्रियव्रत महाराज बहुत योग्य व्यक्ति थे, तो ब्रह्मा जी योग्य व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे अब जिसके कोई योग्यता नहीं है, हम लोग जैसे अयोग्य व्यक्ति हैं, तो उनको छोड़ दो दूसरी बात है। जो सृष्टि करने के योग्य है तो उसको नहीं छोड़ते हैं। तो दक्ष बड़ा निराश थे और दाम्पत्य जीवन से विरत हो गए थे। अब तो ब्रह्मा जी देखे, लो अब तो थोक में लॉस गया ही। अब वे तो अभी सृष्टि करते या नहीं करते, वो तो पोटेंशियल कैंडिडेट ठीक है, तो वो तो एक लॉस हुआ ही। अब ये लगता है कि जो पीच पर खड़ा है, इतना बड़ा तेजी से सृष्टि कर रहा है, ये भी कहीं विकेट न गिर जाए, तो बड़ा चिंतित हो गए। दक्ष तो सृष्टि कर रहे थे ना, और मैंने बहुत तेजी से कर रहे थे, एक बार में 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, एक बार में 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये तो बहुत एक्सपर्ट है। अब यह दाम्पत्य जीवन से विरत हो रहा है, तब सृष्टि बहुत घाटा में चलेगी। तो अनुनीत ब्रह्मा जी वहां आए और दक्ष को समझाने लगे। अब दक्ष को जो समझाए हो, यहां तो हमको नहीं मिला कि वे क्या समझाए हैं, लेकिन कहे होंगे कि क्यों निराश हो रहे हो। अरे मैनेजमेंट और प्रीचिंग में कभी कभी क्लैश हो जाता है। यहां लीडरशिप कोर्स कराते हैं तो उसका एक टॉपिक है कि कभी कभी सन्यासी और मैनेजर में भी क्लैश हो जाता है। तो नारद जी कहे होंगे कि चलता है, वो सन्यासी अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। ब्रह्मा जी तो बहुत एक्सपर्ट हैं, समझा दिए, लेकिन फिर भी दक्ष को भय था कि फिर सृष्टि करें और फिर सन्यासी बना देंगे तो क्या होगा। लेकिन दक्ष तो बहुत रिसोर्सफुल हैं, वो बहुत दक्ष हैं, तो विचार किए कि अच्छा अब जोन बदल देते हैं, अपने जोन में ही प्रीचिंग करेंगे ना। अरे भाई सन्यासी हैं तो पुरुषों को प्रीचिंग करेंगे, अब गर्ल हॉस्टल में जाकर के प्रीचिंग नहीं। सन्यासी का तो अपना क्षेत्र है। और सोचे कि अब पुत्र नहीं उत्पन्न करे, पुत्रियां उत्पन्न करे। अब पुत्रियों के बीच में तो सन्यासी नहीं आएंगे, तो इसलिए दक्ष पुत्री उत्पन्न किए, 60 पुत्रियां उत्पन्न किए। और दक्ष के पुत्रियों का बहुत महत्व है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जो व्यक्ति दक्ष के पुत्रियों का स्मरण करेगा अपर रात्रांते, रात बीतने पर भोर के समय में जो दक्ष के पुत्रियों का स्मरण करेगा तो सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान जब गजेंद्र का मोक्ष किए, उसको संकट से हटा दिए, तो सब लोग वहीं उपस्थित थे और भगवान कहने लगे कि जो व्यक्ति मेरा तुम्हारा ये सरोवर का इस पर्वत का स्मरण करेगा तो पाप से मुक्त हो जाएगा। अब उसी लंबे लिस्ट में दक्ष के पुत्रियों का भी उल्लेख किए हैं, तो वे कह रहे हैं कि जो मेरे अवतार का स्मरण करेगा या हमारे अस्त्र का स्मरण करेगा या गंगा जमुना सरस्वती नदी का स्मरण करेगा तो पाप से मुक्त हो जाएगा। वो उसी में कह रहे हैं कि दाक्षायणी धर्म पत्नी सोम कश्यपयोरपि, जो व्यक्ति दक्ष की पुत्रियां जो धर्म की पत्नी हैं या चंद्रमा की पत्नी है या कश्यप की पत्नी है, तो इनका स्मरण करेगा तो कृतनसह पूरा पूरा पाप से मुक्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से दक्ष के पुत्रियों का वर्णन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज दक्ष के पुत्रियों का विवरण सुनेंगे उनके पुत्रों के साथ। श्लोक अब ला दीजिए, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ब्रह्मा जी के अन्याय करने से षष्टिम जनया मास दुहित्री प्रतिवत्सला, 60 पुत्रियों को जन्म दिए, असिकन्या उसी पत्नी के गर्भ से 60 पुत्रियों को जन्म दिए। अब 60 पुत्रियां जन्म लिए तो उनका विवाह किए। 10 धर्माय कायात अदात 62, 60 पुत्रियों का विवरण दे रहे हैं कि 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से किए और 62 मतलब 12, तो 12 जिसके अंतर्गत है मतलब 13, 12 जिसके भीतर है मतलब 13। काय कश्यप जी को 13 पुत्रियां प्रदान किए और त्रीण 9, 3×9 कितना हुआ 27, ये चंद्रमा को। एक व्यक्ति कह रहे थे उधर बीआईची में कि भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास में भी गणित आ रहा है, श्रीमद् भागवतम में भी गणित है और इसका गणित तो और थोड़ा जटिल होता है। 260 तो सीधा सा गणित है कि 26, लेकिन अब इसका अर्थ किया गया है कि 26 जिसमें है वह मतलब 13। गणित से जान बचने वाला नहीं है। तो 60 पुत्रियों का विवरण दे रहे हैं, 10 धर्मराज को दिए और 13 कश्यप जी को और 27 चंद्रमा को और भूत अंगिरस और कृशास्व, ये 3 व्यक्ति को 2-2 कितना हुआ 56, 56 कितनी बच गई 4, तो उनको भी बाद में कश्यप जी को दे दिए। कश्यप जी का नाम बदल गया उसके बाद प्रदान किए। तो कह रहे हैं कि नाम धेयानी अमूसम त्वम सपात्या नाम चमे फ्रिणु यासम प्रसूति प्रसवर लोका आपूरिता स्त्रय। हम अनुवाद पढ़ते चलते हैं। उन्होंने धर्मराज यमराज को 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27 तथा अंगिरा कृशास्व एवं भूत को दो दो कन्याएं दान स्वरूप दे दी। शेष 4 कन्याएं कश्यप को दे दी गई। इस प्रकार कश्यप को कुल 17 कन्याएं प्राप्त हुई। नाम धेयान अमूसा त्वम सापत्या नाम च मे फृणु जासम प्रसूति प्रसव लोका आपूरितस्त्रयः। अब मुझसे इन समस्त कन्याओं तथा उनके वंशजों के नाम सुनो जिनसे ये तीनों लोक पूरित है। क्या नाम है? भानुर लंबा ककोदयामी विश्वासाध्या मरुतवती बसुर मुहूर्ता संकल्पा धर्म पत्न्य सुतान श्रीणु। यमराज को प्रदत्त 10 कन्याओं के नाम थे, भानु लंबा ककोद यामी विश्वा साध्या मरुतवती बसु मुहूर्ता तथा संकल्पा। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। सबसे पहले 10 पुत्रियों का नाम बतला रहे हैं जिनको धर्म प्रजापति को प्रदान किए, धर्म की जो पत्नी बनी। तो एक दो नाम याद हुआ, फिर से सुन लीजिए नाम। भानु लंबा ककुद यामी विश्वा साध्या मरुतवती वसु मुहूर्ता तथा संकल्पा। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। भानुस्तु देव ऋषभ इंद्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसित लंबाया ततश्च स्तनितनव। हे राजन, भानु के गर्भ से देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ। लंबा के गर्भ से विद्योत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। कितने बेटियों के पुत्र का उल्लेख किया गया इसमें, इस श्लोक में दक्ष के कितने पुत्रियों का नाम आया? 2। ठीक, भानु और लंबा। अब आगे बतला रहे हैं कि ककुदः संकटस्तस्य कीकितस् तनयोजतः भुवो दुर्गाणि जामेय स्वर्गो नन्दिस्ततो भवत्। ककुद के गर्भ से संकट नाम का पुत्र हुआ जिसके पुत्र का नाम कीकट था। कीकट से दुर्गा नामक देवतागण हुए। यामी के पुत्र का नाम स्वर्ग था जिससे नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसमें कितने पुत्रियों का उल्लेख हुआ? 2। किस किस का? ककुद यामी। ठीक, विश्वे देवास्तु विश्वाया अप्रजानस्तान प्रचक्षते साध्यो गणश्च साध्याया अर्थ सिद्धिस्तु तत्सुतः। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए जिनकी कोई संतान नहीं थी। साध्या के गर्भ से साध्य गण हुए जिनके पुत्र का नाम अर्थ सिद्धि था। इसमें कितने पुत्रियों का उल्लेख आया? 2। लेकिन एक के विषय में कह रहे हैं कि उसको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मरुतवांश्च जयंतश्च मरुतवत्या बभूवतु जयंतो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यम विदु। मरुतवती के गर्भ से मरुतवान तथा जयंत नामक दो पुत्र ने जन्म लिया। जयंत भगवान वसुदेव के अंश हैं और उपेन्द्र कहे जाते हैं। इसमें कितने पुत्रियों का उल्लेख आया? 1। इसमें दो पुत्रों का उल्लेख है, इसमें एक का नाम जयंत है और उनको उपेंद्र भी कहा जाता है। हम लोगों के मन में बसा हुआ है कि उपेंद्र बामन देव को कहा जाता है, उपेंद्र बामन देव के कहा जाता है, अदिति के पुत्र हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मरुतवती के एक पुत्र को उपेंद्र कहा जाता है, तो यह किसी दूसरे कल्प की घटना है, इस कल्प की घटना नहीं है। किसी कल्प में मरुतवती के पुत्र को भी उपेंद्र कहा जाता था। अच्छा, मुहूर्त का देवगणा मुहूर्ताया से जगिरे ये वै फलम प्रयच्छन्ति भूता नाम स्वस्व कालजम। मुहूर्ता के गर्भ से मौहूर्तिक गण नामक देवताओं ने जन्म ग्रहण किया। ये देवता अपने अपने कालों में जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। संकल्पायास्तु संकल्प काम संकल्पज स्मृत बसवस्तौ बसोह पुत्रा तेषां नामानि मेष्रिणु द्रोण प्राणो ध्रुव अर्को अग्निर्दोषा वास्तु विभावसु द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्ष शोक भयादय। देखिए, संकल्पा का पुत्र संकल्प कहलाया, जिससे काम की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र अष्ट वसु कहलाए, उनके नाम सुनो। कभी कभी आप लोग सुनते हैं कि पहले नंद बाबा वसुओं में प्रधान थे, द्रोण नाम के वसु थे, तो कभी कभी जिज्ञासा मन में आ जाती है कि और कौन वसु होते हैं, तो यहाँ आठ उन वसु का नाम सुन लीजिए। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु और विभाव वसु, ये आठ वसु हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु तथा विभाव वसु। द्रोण नामक वसु की पत्नी अभिमति से हर्ष, शोक, भय इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ। और प्राणस्य ओर्जसती भार्या सह आयु पुरोजवः, ध्रुवस्य भार्या धरणी असुत विविधा पुरः। प्राण की पत्नी उरजस्वती के गर्भ से सह, आयुष तथा पुरोजव नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव की पत्नी का नाम धरणी था, जिसके गर्भ से विभिन्न नगरों की उत्पत्ति हुई। अर्कस्य वासना भार्या पुत्रा तर्षादय स्मृता, अग्निर्भार्या वसोधारा पुत्रा द्रविणकादय। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें तर्ष प्रमुख था। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से द्रविणक इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए। अस्कंधश्च कृतिका पुत्रो ये विशाखादयस्तथ दोषस्य सर्वरी पुत्र शिशुमारो हरेह कला। अग्नि की दूसरी पत्नी कृतिका से अस्कंध कार्तिकेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्रों में विशाख प्रमुख था। दोष नामक वसु की पत्नी सर्वरी से शिशुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो श्री भगवान का अंश था। वास्तो रांगिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपति ततो मनुष्याक्षसो भूत विश्वे साध्या मनोसुता। वास्तु नामक वसु की पत्नी आंगिरसी से महान शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा आकृति के पति बने, जिनसे चाक्षुष मनु ने जन्म ग्रहण किया। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्यगण कहलाए। विभावसो रसुत्तोषा व्युष्टम रोचिस मातपम पंचयामोत्थ भूतानि जेन जागृति कर्मसु। विभावसु की पत्नी उषा के तीन पुत्र उत्पन्न हुए, व्युष्ट, रोचिस तथा आतप। इनमें से आतप के पंचयाम दिन उत्पन्न हुए, जो समस्त जीवात्माओं को भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अब स्वरूपासुत भूतस्य भार्या रुद्रांश कोटिसा, धर्म के पत्नियों का विवरण दे करके अब भूत के पत्नी का विवरण दे रहा है। स्वरूपा सुत भूतस्य भार्या रुद्रांश कोटिशः, ये भूत की पत्नी स्वरूपा करोड़ों करोड़ों रुद्रों को जन्म दी, लेकिन उसमें से 11 रुद्र प्रमुख हैं। और कभी कभी लोग नाम खोजते हैं, यहाँ देख लीजिए 11 रुद्र का क्या नाम है, रैवत, अज, भव, भीम, बाम, उग्र, वृषाकपि, अजय कपात, अहिर्ब्रघ्न, बहुरूप तथा महान। भूत की दूसरी पत्नी भूता से उनके साथ ही भयंकर भूतों तथा विनायक आदि का जन्म हुआ। तो 11 रुद्र का जन्म हुआ एक पत्नी से भूत के, जिसका नाम स्वरूपा था, और भूत के दूसरी पत्नी थी उसका नाम भूता था। तो उससे 11 रुद्रों के सहायक ये प्रेत, विनायक इत्यादि जन्म लिए। तो इस प्रकार दक्ष के पुत्रियों का विवरण दिया जा रहा है, जो परम पवित्र है, सुनने मात्र से हमारे पाप का नाश हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।